हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस महान उत्सव रुक्मिणी द्वादशी के उत्सव पे। हरे कृष्णा। और हमारे बीच में आज बहुत ही विशेष वक्ता उपस्थित हैं, हिज ग्रेस कमल लोचन प्रभु। हिज ग्रेस कमल लोचन प्रभु की ये पहली विजिट है पंजाबी बाग में, तो आप में से काफी भक्त हो सकते हैं उनके बारे में ना जानते हो। कमल लोचन प्रभु पूरे भारतवर्ष में तो विख्यात हैं अपने बहुत ही बड़े पांडित्य के लिए, बहुत सुंदर प्रवचनों के लिए और बहुत ही डीप रियलाइजेशन जो शास्त्रों की है, प्रभुपाद जी के परपट्स के हैं। ब्रीफ बैकग्राउंड, प्रभु जी का जन्म ही एक माधव ब्राह्मण परिवार में हुआ और बचपन से एक पूरे ट्रेडिशनल जैसे ब्राह्मण फैमिलीज में होता है उनको इसी ढंग से पालन पोषण हुआ। और कलकत्ता के मैरिज इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट में जब प्रभु जी पढ़ रहे थे तब इनका संपर्क इस कौन से हुआ। और हैरानी की बात है कि जैसे इस कौन से संपर्क हुआ एक ही साल में इन्होंने प्रभुपाद जी की सारी पुस्तकों को पढ़ डाला और भगवत गीता को 5 बारी पढ़ा और तभी से इनका इंटरेस्ट फिलोसफी में इतना अच्छा हो गया। उसके बाद इन्होंने जॉब ज्वाइन किया मर्चेंट नेवी का, 3 साल तक जॉब किया। उसके बाद इनको लगा नहीं, ये भगवत गीता का संदेश विशेषकर युवाओं में और बच्चों में अच्छे ढंग से इसका प्रचार होना चाहिए, तो उन्होंने अपना सुंदर जॉब जो था उसको त्यागा और मीरा रोड बॉम्बे में ज्वाइन किया और एक ही साल में ये वाइस प्रेसिडेंट बने और आजकल ये को प्रेसिडेंट है और खूब सुंदर प्रचार कर रहे हैं। विशेषकर पीआईएचई वृंदावन से छोटा फायर एजुकेशन में भक्ति शास्त्री भक्ति वैभव पढ़ाते हैं, लीड्स कोर्सेज में भी फैकल्टी है और साथ में अभी इन्हीं की अध्यक्षता में मीरा रोड का बहुत सुंदर मंदिर नया बना। कितने भक्तों ने देखा है मुंबई में मीरा रोड का मंदिर, बहुत ही सुंदर मंदिर प्रभु जी की अध्यक्षता में बना है। तो नॉर्मली प्रभु जी प्रचार करते हैं महाराष्ट्र गुजरात और राजस्थान के एरियाज में, लेकिन हमने कहीं पर मौका नहीं मिल पाया। अभी यहाँ पे ब्रह्मचारी के लिए जो भक्ति शास्त्री कोर्स चल रहा था उसमें इनसे रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को माना। यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए हैं और मुझे पूरा विश्वास है लास्ट टाइम नहीं होगा, बार बार प्रभु जी आएंगे अपना संग देंगे और इज ए बहुत जल्दी आप इनको एक नए रूप में भी देखने वाले हैं, इज ए संन्यास कैंडिडेट। सो विश हिम ऑल द बेस्ट। मेरे प्रभुपाद जी के आंदोलन में खूब प्रचार करें। सही भक्तों से निवेदन है कृपया करके अपने फोन को स्विच ऑफ कर दें या साइलेंट मोड पे रखें और बहुत ध्यानपूर्वक आज रुक्मिणी देवी जी की महिमा के विषय में प्रभु जी बताएंगे, कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए। हरे कृष्ण।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरे नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। आज रुक्मिणी द्वादशी है, रुक्मिणी देवी का जन्मदिन खास करके रुक्मिणी विदर्भ से है, महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र में एक प्रांत पड़ता है विदर्भ, नागपुर इत्यादि एरिया, उधर कौंडिन्यपुर करके एक जगह है, उधर उनका जन्म हुआ है। उधर सुंदर मंदिर भी है और इस्कॉन का भी प्रचार उधर होता है, तो उधर इधर भी इसके रुक्मिणी का और एक नाम है वैदर्भ भी, क्योंकि विदर्भ से है। तो मैंने सोचा कि आज भले ही अनेकों अनेकों लीलाएं हैं भगवान श्री कृष्ण का रुक्मिणी के साथ, लेकिन भक्तिवर्धक एक प्रसंग है, वो है रुक्मिणी का पत्र, रुक्मिणी का प्रेम पत्र, जिसको हम अंग्रेजी में लव लेटर बोलते हैं। ये इसका विशेषता ये है, एक ही लव लेटर जो ब्रह्मचारी पढ़ सकता है। हाँ। इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। आपको ये 7 श्लोक दिए गए हैं जो रुक्मिणी का प्रेम पत्र का एक लेटर है। तो खुद रुक्मिणी ने अपनी हाथों से ये पत्र को लिखा था और ब्राह्मण के हाथ में भेजा था। बड़े सुंदर श्लोक है, तो मैंने सोचा कि इन श्लोकों को आज उच्चारण करेंगे और उनको थोड़ा सा वर्णन करने का प्रयास करेंगे। तो ये सातों के सातों श्लोक मेरे बाद उच्चारण करने का प्रयास करें और उसके बाद उसका वर्णन करना प्रयास करेंगे। सभी लोग मेरी बात बताइएगा। श्री रुक्मिण्युवाच श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्वेश्य कर्ण विवरैर्हरतोऽङ्गतापम् निर्वेश्य कर्ण विवरैर्हरतोऽङ्गतापम् रूपं दृशां दृशिमताम् अखिलार्थलाभम् त्वय्याच्युता विशति चित्तमतप्रदं मे त्वय्याच्युता विशति चित्तमपत्रपं मे वात्वा मुकुन्द महती कुलशीलरूपा वात्वा मुकुन्द महती कुलशीलरूपा विद्यावयो द्रविणदामभिरात्मतुल्यम् विद्यावयो द्रविणदामभिरात्मतुल्यम् धीरापतिं कुलवति नवनीतकन्या काले नृसिंहनृलोकमनोभिरामम् काले नृसिंहनृलोकमनोभिरामम् त्वं मे भवान् खलु हृदपतिरङ्गजायाम् तन्मे भवान् खलु हृदपतिरङ्गजायाम् आत्मार्पितश्च भवतोऽत्र विभो विदेहि महावीरभागम विमत शुचैद्य आरा गोमा युवान् मृगपते बलिमम्बुजाक्ष गोमा युवान् मृगपते बलिमम्बुजाक्ष पुत्रेष्ट दत्त नियम वृतदेव विप्र श्रेष्ठ दत्त नियम पदेव विप्र विर्वार्चना विरलं भगवान् परेशः आराधितो यदि गदाग्रजयित्य पाणिम् गृह्णन्तु मे नदमघोष सुतादयोऽन्ये मे नदमघोषसुतादयोऽन्ये शोभवानि त्वं मदितोद्भवने विदर्भा गुप्तस्वमेतपृतनापतिभिः परीतः निर्मत्य चैद्यमगजेन्द्रबलं प्रहस्य मां राक्षसेन विधनोद्वह वीर्यशुल्कान् अन्तःपुरान्तरचरीं मह्नीयबन्धूम् अन्तःपुरान्तरचरीम् अनिहत्य बन्धो त्वामुद्वहे गतमिति प्रवदामुपायम् पूर्वेज्युरस्ति महति कुलदेव यात्रा यस्यां बलिर्नववधूर्गिरियामुपेया यस्यां नृपङ्कजरजस्तवनं महन्तो वाञ्छन्ति युमापतिरिवात्मतमोपहत्ये वाञ्छन्त्युमापतिरिवात्मतमोपहत्यैः निर्याम्बुजाक्षन लभेत् भवत्प्रसादम् जय्यामसुम्रतकृशां शतजन्मभि स्यात्। ज्ञानविनन्दस्य अनञ्जनशलाकय चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपत्पदामयेहं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणलिताश्रीतांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धौ दीनबन्धौ जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। दत्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुंजकुंद का लीला का वर्णन होने के बाद मुंजकुंद किस प्रकार बद्रिकाश्रम गए और नरनारायण ऋषि संघ मुलाकात हुआ उसका वर्णन होने के बाद 52वां अध्याय में परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा सुखदेव गोस्वामी से। परीक्षित महाराज कहते हैं सुखदेव गोस्वामी से, मैंने सुना भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से विवाह किया, राक्षस विधानेन राक्षस का विधान से विवाह किया उन्होंने, मैंने सुना। मुझे भगवान श्रोतुमिच्छामि, हे भगवान मैं सुनना चाहता हूँ। कृष्ण श्यामित तेजसहा, कृष्ण का तेजस जो है अमित है, यानी इसका कोई सीमा नहीं है। यथा मागध शाल्वा, जो मगध के राजा है शाल्व इत्यादि राजाओं को उन्होंने परास्त करके रुक्मिणी को हरण किया, तो कृष्ण के बारे में ब्रह्मन कृष्णकथा पुण्य, कृष्णकथा महापुण्य है। और ये जो कृष्णकथा जो है सारे लोक का माधवी बहुत मधु टपकने वाला है, इतना अद्भुत है। वैसे जो कृष्ण का जो लीला सारा जगत की जो कलमश है उसको नाश करने वाला है, उसके बारे में श्रुतज्ञो नित्य नूतनाः, जितनी बार भी सुनो ऐसा लगता है कि बार बार नयापन लगता है। परीक्षित महाराज इस बात को दूसरी बार कह रहे हैं। परीक्षित महाराज का ये जो प्रश्न था कि मुझे ब्रह्म विमोहन लीला के बारे में कहिए, ऐसे कहा था तो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी ने कहा यन्नूतनस्य शिष्यस्य यन्नूतनस्य ईशस्य, भगवान के जो लीलाओं को बार बार जो सुनता है, जब भी सुनता है उसको जब नयापन लगता है निश्चित रूप में वो भागवत उत्तम है। जैसे किसको नहीं मालूम है रुक्मिणी का आरण का लीला, सबको मालूम है। किसको मालूम नहीं है रामायण, सबको मालूम है रामायण, लेकिन फिर भी जब भी उसका वर्णन होता है बार बार सुनने में करता है। तो कृष्ण लीलाओं को बार बार सुनने का मन जिसको करता है वो कौन है, भागवतोत्तम, त्वया भागवतोत्तम, ये स्वयं सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहा। फिर वापस ने कहा कि श्रुतज्ञो नित्य नूतन, सुनने से बार बार उसको अंदर नूतनता दिखाई पड़ती सुनाई पड़ती है, इसलिए मुझे सुनाइए। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के प्रश्न सुनकर तुरंत कहना कथा प्रारंभ किया। तुमने कहा कि ये भीष्म कहा, एक राजा थे भीष्म नामक, उनके पांच पुत्र थे, एक पुत्री थी। पुत्री का नाम तर्पिणी और रुक्मिणी का गुण जो है इतना अद्भुत है, इतने सुंदर है, लेकिन वास्तविकता में रुक्मिणी का सुंदरता यह है कि उन्होंने सुना था कृष्ण के विषय में। इसने कहा ऐसा उपश्रुत्या रूप वीर्य गुण श्रिय गृह आगते ही गीयमाना त्वम मेने सदृशम पतिम। तो क्या हुआ, घर में अनेकों अनेकों राजा के घर में ब्राह्मण लोग आते थे, आके सुनाते थे किसके बारे में, कृष्ण के बारे में, कृष्ण के रूप के बारे में, उनके वीर के गुणों उनके शक्ति के बारे में, उनके अलग अलग प्रकार के जो सुंदरता के बारे में, उनके कार्यों के बारे में सुनाते सुनाते रुक्मिणी जो है एकदम आकर्षित हो गई कृष्ण के प्रति, इतनी आकर्षित हो गई कृष्ण के प्रति रुक्मिणी ने निश्चय कर लिया अगर विवाह करना है तो मुझे कृष्ण से ही करना और किसी से नहीं करना। तो कुछ लोग कहते हैं कि भगवान का दर्शन हुआ क्या, लेकिन रुक्मिणी एक उदाहरण है, दर्शन करने की जरूरत नहीं, भगवान के बारे में सुनते जाओ प्रेम उत्पन्न होगा। एक वो ऐसे सुंदर उदाहरण दिया गया, एक लौकिक उदाहरण है, लेकिन लौकिक उदाहरण भी क्योंकि हम लौकिक है तो लौकिक उदाहरण के द्वारा ही आत्म को समझ सकते हैं। तो ऐसे कहा जाता है कि नो द अननोन बाय द नोन। तो जैसे कि मान लीजिए किसी एक परिवार है, परिवार में एक पुत्री है और उनका विवाह कराने के लिए या एक अच्छे वर को ढूंढने के लिए पिताजी रोज जाते हैं, शाम को आते हैं, उनकी पत्नी पूछती है क्या हमारे पुत्री के लिए योग्य वर मिला। तो एक दिन ऐसा हुआ कि शाम को आए, बहुत थके हुए आए और जिस कमरे में परोस रही है उनकी पत्नी पति को और पूछ रही हैं पति से कि हमारी पुत्री को एक योग्य वर आप क्या हुआ, आज कुछ बताइए, आज हमारे भाग्य क्या है, हमारी पुत्री का कुछ भाग्य हुआ, भाग्य खुला। तब ये चर्चा हो रही थी उन दोनों के बीच में, दरवाजा खुला था और दूसरे कमरे में वो उनकी पुत्री बैठी थी। तो इन दोनों के बीच में जो चर्चा है वो पुत्री सुन रही है, खास करके वो पुत्री के विषय में चर्चा है तो तुरंत कान तो जाएगा ही, सुनने के लिए इच्छा तो होगी। तो जैसे उनकी पत्नी ने पूछा कि आपने आज क्या हुआ, तो पति कहते हैं हाँ हाँ आज एक बहुत अच्छा लड़का मिला, बहुत अच्छा सुंदर वर मिला। तो पति पूछती हो कैसा है बताइए, तो उस वर के विषय में कहना प्रारंभ करते हैं, बहुत सुंदर है, पढ़ा लिखा है, ये है ये है, सबके गुणों को जैसे वर्णन करती करना शुरू करते हैं उनके पिताजी। और दूसरी कमरे में जो बैठी उनकी बेटी है, खाली सुनने मात्र से उनको लड़के को देखा नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, खाली सुनने मात्र से उनके प्रति एक प्रकार की प्रेम की भावना उत्पन्न होती है। तो ये सिस्टम है, क्या है, कृष्ण के बारे में सुनने से प्रेम प्राप्त करना, श्रवण के द्वारा प्रेम प्राप्त करना। इसलिए बार बार आचार्य ने कहा कि भगवान को देखो, कैसे देखो, कानून से देखो। इतना हद तक कि अगर भगवान आपको देखने हम ये नहीं चाहते कि हम भगवान को जाके देखें, हम चाहते हैं कि भगवान आके हमको देखे। ये है गौड़ी वैष्णव धारा है, ऐसा सेवा करो, ऐसा सेवा करो कृष्ण को ऐसा लगे कौन है भाई इतना सेवा कर रहे, जाके देखो तो सही। तो कृष्ण को दर्शन करना क्या है, वो है कानों से। अब जितना कानून से कृष्ण को सुनते सुनते जाओगे यही दर्शन है, यही प्रेम है, समझो। तो रुक्मिणी एक उदाहरण है, खाली सुनने मात्र से किस प्रकार कृष्ण से प्रेम हो सकता, इतना हद तक प्रेम क्या है। ये माना तम मेने, मेने मतलब संस्कृत में ऐसे कहा जाए कि प्रभुपाद इधर लिखा गया ही शी थॉट, निश्चय किया, मैंने मतलब निश्चय किया, क्या निश्चय किया, सदृशम पतिम, मेरा योग्य पति है। स्त्री में अहंकार है, हाँ ये मेरा योग्य पति है। तो इस प्रकार निश्चय किया, जैसे निश्चय किया कृष्ण को मालूम पड़ा, कृष्ण तो साधारण थोड़ी ना, वो तो परमात्मा है, रुक्मिणी इतना बुद्धिमती है, इतना उनके अंदर गुण है, कृष्ण को भी मालूम पड़ गया कि इस प्रकार रुक्मिणी मुझसे प्रेम करती है और कृष्ण ने योजना बनाया। लेकिन दूसरी ओर क्या था, रुक्मिणी का जो भाई रुक्मी वो सोच रहा था कि मैं इस मेरी बहन को रुक्मी को दू, शिशुपाल को दू। तो निश्चय भी कर लिए थे विवाह कराने का, लेकिन रुक्मिणी अभी रहा नहीं गई, तो सोचा अगर उन्होंने सोची कि अगर मैं अभी कृष्ण को पत्र नहीं लिखूंगी तो गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या हुआ, एक ब्राह्मण को बुलाई, एक ब्राह्मण को बुला के उसने कहा कि मैं एक पत्र लिखी हूं, इस पत्र को आप लेके जाओ, लेके जाके तुरंत कृष्ण को दो। एक ब्राह्मण उस पत्र को लेके आया, जैसे कृष्ण के पास आके पहुंचा, उधर द्वारका पहुंचे ब्राह्मण, ब्राह्मणों को स्वागत किया जाता है उधर के जो डोर कीपर है, तुरंत लेके गए कृष्ण के पास। जैसे कृष्ण के पास लेके गए तो कृष्ण ब्राह्मण को देवता रूप के रूप में स्वागत करते हुए कहा गया, तथा ऐसा वर्णन किया गया इधर कि देवता के रूप में स्वागत करते हुए देवताओं के रूप में उनको पूजा करके तम भुक्तवंतम विश्रांतम उनको अच्छी तरह से पिला के उनको विश्राम दिला के उपगम्य सताम गति। तो उन्होंने वो पूछने लगे अपने हाथों से, स्वयं के हाथों से उनकी चरणों को मसाज करते हुए उन्होंने पूछा, ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण आप महान होते हैं, क्वचित द्विजवरा श्रेष्ठ, तो आप द्विजों में वर श्रेष्ठ रखते हो, धर्मश्च दस्य संतः, क्या आप जो है धर्म को अच्छी तरह से पालन हो रहा है कि नहीं आपका, ब्राह्मण धर्म को, और ब्राह्मण का एक ही धर्म होता है वो संतुष्ट मनसा सदा, हमेशा मन में संतुष्ट रहते हैं। लेकिन जो ब्राह्मण असंतुष्ट होता है वो कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता, इंद्र का राज्य प्राप्त होने के बाद भी संतुष्ट नहीं हो सकता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं ब्राह्मण, जो ब्राह्मण संतुष्ट होता है ना वो निश्चित रूप में मेरे लिए बहुत प्रिय होता है, संतुष्टि जो है ब्राह्मण का महान धन होता है। और आगे उन्होंने कहा कि आपकी राजा बराबर देखभाल कर रहे कि नहीं, क्योंकि आप इतना दूर से एक राज्य को पार करें, को राज्यों को पार करके समुद्र को पार करके इधर मेरे पास आए, इसका मतलब क्या कुछ आपका राजा आपको बराबर देखभाल कर रहा है कि नहीं। ऐसे कुछ खबर पूछने के बाद ब्राह्मण ने कहा कि मैं एक प्रयोजन से आया हूं, ये प्रयोजन ये है, ये पत्र आप लीजिए। रुक्मिणी ने पत्र भेजा है, ये बात भागवत में सुखदेव गोस्वामी नहीं कहते, लेकिन शिव श्रीधर स्वामी कहते हैं कि ब्राह्मण ने पत्र दिया कृष्ण को, कृष्ण उस पत्र को हाथ में रखते ही उनको लगा कि मैं पढ़ पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि इतना भक्ति से उत्पन्न पत्र होगा, रुक्मिणी इतना सुंदर इतनी महान गुणशाली है, उनका जो प्रेम पत्र पढ़ के मैं अपने आप को संभाल पाऊंगा कि नहीं, पढ़ पाऊंगा कि नहीं। तो तुरंत आंख बंद करके कृष्ण ने कहा तो ब्राह्मण को दिया। ऐसा होता है ना, अगर कोई मान लो कि एक लड़की लड़के के पास आके एक प्रेम पत्र लेकर उसको हालत खराब हो जावे, कृष्ण का भी ऐसी हालत हो सकता हो गया हो, उन्हें ब्राह्मण को दिया, आप ही पढ़ लेना, मेरे से नहीं होगा पढ़ना। तुरंत कृष्ण के आने आज जैसे ब्राह्मण के आते ब्राह्मण ये पत्र को पढ़ना शुरू किया। तो ये पत्र रुक्मिणी किस भाव से लिख रही है ये जानना जरूरी है। तो कृष्ण को तो मालूम, कृष्ण को लिख रही है तो क्या भाव से रुक्मिणी ये पत्र लिख रही है, ये भाव से लिख रही है ये कृष्ण तुरंत आओ मुझे लेके जाओ। तो कृष्ण मान लो कहते होंगे रुक्मिणी को, हे रुक्मिणी ना तुमको मैंने देखा है ना तुम्हारे बारे में सुना है, और इतना हिम्मत कैसे आ गया तुमको बोलने के लिए, वो भी राजा की कन्या, हा? किसी पराये पुरुष को इस प्रकार का पत्र लिखना क्या बेशर्मी नहीं है क्या। रुक्मिणी ये सोच रही कि मैं बेशर्म हो गई हूं, कृष्ण बोलते होंगे तो बेशर्मी क्या क्यों कार्य कर रही हो। रुक्मिणी कहती है हां मैं बेशर्म हूं, आपको जो करना कर लेना, अगर आप बोलोगे मैं आपको स्वीकार करूंगा, मुझे स्वीकार करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, आप मुझे स्वीकार नहीं भी करेंगे ना पत्र लिखने में क्या जाता है, मैं अपना हृदय का दिल खोल के बोलूंगी। आप बोलोगे मैं राजा का कन्या हूं, एक पराये पुरुष को इस प्रकार का पत्र लिखना जो है वो ठीक नहीं है, मर्यादा नहीं है, अभी मर्यादा वर्यादा सब खत्म हो गया मेरे अंदर। क्यों खत्म हो गया मालूम है, इसका कसूर किसका है, मेरी इस प्रकार की बेशर्मी का ये हालत जो है ये इसका कारण क्या मालूम है, कारण मैं नहीं हूं आप हो। इस भाव को ध्यान में रखते हुए मेरा इस बेशर्मी का कारण आप हो कृष्ण, सुनो क्यों है क्या कारण है, आप कैसे कारण बने सुनिए। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते, तो कहते श्रुत्वा मैंने सुनी, अगर मेरा अगर कसूर कुछ है, दोष अगर मेरा है कि मैंने क्या किया आपके बारे में सुना, यही समस्या। इफ एट ऑल देर इज एनी फॉल्ट, मेरे अंदर अगर कुछ दोष है, क्या है वो, मैंने आपके बारे में सुना। ये साहित्य भाषा में गुण दोष, दोष गुण कहा जाता है, गुणों को वर्णन करने के लिए वो उस दोषों के द्वारा गुणों गुणावली किया जाता है, इसलिए उसको साहिपाती कहा। अगर आप भौतिक जगत के साथ आ सकती है, कृष्ण को कभी मत देखना, गोविंद को वंशी तट वट के तट पे जो कृष्ण है ना, गोविंद है ना, वो कभी मत देखना। अगर आपको भौतिक संसार से आ सकती है, अरे कृष्ण को कभी मत देखना, सिद्ध अरे भक्त शास्त्र में क्या लिखाना चाहिए, आचार्य को क्या बोलना चाहिए, जाओ कृष्ण का दर्शन करो बोलना चाहिए। लेकिन रूप गोस्वामी ने कहा कृष्ण का दर्शन मत करो अगर आपको भौतिक जगत से आ सकती है तो। यानी दोषों के द्वारा गुणों का वर्णन किया जाता है, कृष्ण का सुंदरता का वर्णन कैसे किया रूप गोस्वामी पाद ने, दोष के द्वारा गुण को वर्णन किया जा रहा है। एक एक शैली होती है, तो ये रुक्मिणी कहती है मेरा अगर कुछ दोष है, अगर आप कहते हैं मैं पागल हो गई हूं, मैं आपके प्रति प्रेम हो गया, मैं प्रेम में मैं बेशर्म कहा गया, कामातुराणाम न भयम न लज्जा, किसी को अगर किससे प्रेम हो जाता है ना, तो सबसे पहला क्या हो जाता है, लज्जा को त्याग, निर्लज्ज हो जाते। तो रुक्मिणी कहती है मैं निर्लज्ज हो चुकी हूं, ये निर्लज्जता का कारण क्या है, कारण यह है शुत्वा गुणा, आपका गुण ही कारण है। कौन बोला आपको इतना सुंदर होने के लिए, कौन बोला इतना गुणवान होने के लिए, तो आपके बारे में मैं सुन के मैं पागल हो गई, इतना सुंदर हो, इतना सुंदर हो, आपकी सुंदरता कैसा है, भुवन सुंदर शुण्वदान्ते, भुवन सुंदर, इस जगत में कोई आपके समान सुंदर नहीं है। और एक अर्थ क्या है, अगर कोई सुंदरता इस जगत में है वो सारी सुंदरता आप में है। तीसरा अर्थ क्या है, आपके बिना है, आपके वजह से इस जगत में कुछ सुंदरता कुछ दिखाई पड़ता है। अगर आपकी दृष्टि ना होती इस जगत में कोई सुंदरता नामक शब्द ही नहीं होता, वो ना सुंदर सुनताम थे, तो क्या हुआ, तो अच्छा मैं ही दोष हूं क्या, और कोई दोषी नहीं है क्या। अर्पुणी कहती हाँ हो सकता है, और एक दोषी है, कौन है मालूम है, वो मेरे कान निर्विश्य कर्ण विवर, जैसी आपकी ये जो गुणावली को मैंने सुनी, आपका जो सुंदरता का जो वर्णन मैंने सुनी, निर्विश्य कर्ण जो मैं कर्णों से प्रवेश किया, निर्विश्य कर्ण विवर गतापम, मैं शुरुआत में आपके बारे में सुन रही थी, मेरे हृदय में जो ताप था, दुख था, हर प्रकार की जो चिंता थी, सब शांत हो गया। लेकिन सुनते सुनते कि मैं शुरुआत में सुनना शुरू किया तो आपके बारे में इतना अच्छा लगने लगा कि पता नहीं लगा कब ये बेशर्मी आ गई मेरे अंदर। लेकिन माता पिता बच्चों को भेजते बेचारे, जाओ शांति रहेगी, जब करो भागवत बैठो, शांति से सुन रहे, बाद में व्यक्ति जो है इतना अशांति हो जाता है उनके परिवार में। शुरुआत में तो शांति के लिए आते हैं, बाद में वो खुद भी अशांत हो जाता है, परिवार में उत्पात मचा देता है, वह माता पिता आके चिल्लाने लग जाते हैं कि मेरा बेटा को लेके गया, अरे आपने तो भेजा था। तो क्या रुक्मिणी कहती है शुरुआत में आपने प्रवेश किया, भाई शांति दूंगा, शांति प्रदान करिए करके मैंने सुनी, आपको सुनते सुनते पता नहीं ये पागलपंती, ये प्रेम कब प्रकट हुआ, ये बेशर्मी मेरे अंदर कब प्रकट हुआ, ये निर्भयता कैसे प्रकट हुआ, मुझे समाज के प्रति कोई भय नहीं रहा, ये कब प्रकट हुआ मुझे मालूम नहीं है। रूपम दृशाम दृश्यमताम अखिलार्थलाभम, तो आप फिर मुझे क्यों प्राप्त करना चाहते हो, क्योंकि रूपम दृश्याम दृश्यमताम अखिलार्थलाभम, आपका जो रूप है ना, दृश्यमताम अखिलार्थलाभम, अगर आंखों का सिद्धि अगर कुछ है, हमको अगर आंख की प्राप्ति हुआ है, उस आंखों का प्राप्ति का कारण क्या है, अगर इस संसार में देखने लायक वस्तु अगर कुछ है, व्यक्ति अगर कुछ है, तो आप ही हो, तो आंखों का मूल, उनका दृष्टि का एकमात्र संतुष्टि जो है, या उनका जो सिद्धि जो है, उपयोग जो है, वो यही है कि आपका दर्शन, तो इसलिए आपकी दर्शन की लालसा से, ये नहीं कि आपकी दर्शन के लिए मैं आ रही हूं, आप आओ, तो इतना लालसा है कि आपको आना ही पड़ेगा, आके क्या करना, मुझे लेके जाना होगा। तो अच्युतावि त्वय्याच्युतावि, अच्युता अच्युता मतलब कौन है जो कभी तुच्छ नहीं होते। अगर मेरा पत्र पढ़ के आपका जो मनस्थिति, क्योंकि आप आत्माराम हो, शास्त्र क्या कहते हैं, आपका मन में कुछ हलचल नहीं होता है, चित्तम अपत्रपम में, आप देख मेरा चित्त जो है अपत्रपम, मतलब बेशर्म हो चुका है मेरा चित्त, इसलिए आप आओ लेके जाओ। मेरा पत्र लिखने का उद्देश्य यह है कि मेरे अंदर जो आपकी प्रति जो प्रेम की भावना, अगर आप पढ़ लेंगे, जरा सा ही पढ़ लेंगे, आपके अंदर ऐसी थोड़ी सी भावना जागृत, तो आप मुझे आके लेके जाएंगे। ये भाव के साथ वो लिखती है। बाद में कहती है, कृष्ण कहा ठीक है मैं बहुत सुंदर हूं, सुंदर है तो क्या इस संसार में एक ही तुम ही हो मेरे से इतना प्रेम करती हो? भुवन सुंदर कहा, सब कुछ कहा कि और किसी ने इस प्रकार का लेटर तो नहीं लिखा मुझे, पहला लव लेटर है मेरा, और भी कुछ आना चाहिए था ना। तो बहुत सुंदर बात कहती, क्या कहती है रुक्मिणी, क्वात्मा मुकुंद महती कुलशील रूपा विद्यामयो द्रविण दाम विरात्म तुल्यम। वो कहती है क्वात्वा मुकुंद, हे मुकुंद, मुके कुंदवत, मुस्कुराते हुए कहती है, पत्र लिखते समय कुंती के मुख में मुस्कुराहट आई, क्यों? कृष्ण का मुखारविंद को स्मरण कर रही है। मुखे कुंदवत, जिनका मुख कुंद पुष्प जैसा, उसको मोगरा कहते हैं, मोगरा कुंद मतलब मोगरा, एक एक प्रकार का मोगरा है वो। आपका जो मुख जो है कुंदवत, मुखे कुंदवत, इसके आपका नाम मुकुंद है, रुक्मिणी स्मरण करते हुए, महती कुलशील रूपा, जो स्त्री अच्छे कुल में जन्म लिया ना कृष्ण, अच्छे कुल में जिसका जन्म हुआ है वो केवल आपको पति के रूप में मानेगी, जिसके अंदर शीलता है वही वो स्त्री आपको ही पति के रूप में माने, किसी को देखेगी भी नहीं। जो सुंदर स्त्री होती है ना वो केवल आपको ही प्राप्त करेगी, आपको ही देखने का मन करेगी, और जो पढ़ी लिखी स्त्री होती है, विद्या अगर थोड़ी सी भी विद्या है तो केवल आपको ही पति के रूप में स्वीकार करेगी। जो वयो दामवीर आत्म, क्यों? क्योंकि आपके जैसा कोई है नहीं संसार में, आत्मतुल्यम इन सब चीजों में कोई आपके समान है ही नहीं, इसलिए थोड़ी सी भी अच्छे परिवार में जन्म लिया है केवल कृष्ण को ही चुनेगी। मैं तो बहुत अच्छे परिवार में जन्म लिया, इसलिए आपको चुनी हूं। यानी दूसरे शब्दों में जो स्त्री कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार नहीं करती वो अच्छे कुल में नहीं है, और जो स्त्री कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार नहीं करती उनका कुल ही निगुशीलता ही नहीं है, और जो स्त्री कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार नहीं करते बदसूरत है। इन शब्दों के द्वारा कहती है, महती कुलशील रूपा विद्यो वयो विद्या वयो दामोदर आत्मतुल्यम तीरा पति। तो कृष्ण कहा, अरे चाचा ऐसा बोल रहे हो कि क्या इस संसार में केवल आप ही कुलवती हो क्या, और कोई कुलवती है ही नहीं, हा? और कोई सुंदर ही नहीं है, यानी आपकी परिभाषा केवल कुलवती सुंदर सुशील अच्छे परिवार में जन्म ली स्त्री मात्र आपको चुनती है, कि मुझे तो कोई हाथ के अलावा कोई चुना नहीं आज तक, कृष्ण अभी तक विवाह नहीं हुआ, रुक्मिणी के पहले बार होने वाला है, तो मेरे अलावा आपके अलावा कोई और है ही नहीं। तो रुक्मिणी कहती है बहुत लोग लाइन में खड़े हैं। तो क्या शब्द की बात कहते, दीरावतिम कुलवती नवनीत कन्या काले, काले मतलब आने वाले समय में 16,000 और 108 खड़े हैं, 107 खड़े हैं, मैं पहली हूं नंबर में, फर्स्ट नंबर में, उनका अभी समय नहीं आया है। दीराह पतिम कुलवती नवनीता, अगर कुलवती है तो क्यों नहीं स्वीकार करेगी? तो इस प्रकार रुक्मिणी कहती है, कृष्ण मैं आपको इसलिए स्वीकार की हूं क्योंकि मैं कुलवती हूं, जो आपको स्वीकार नहीं करता है वो कुलवती है ही नहीं, सुंदर नहीं है, उनके पास विद्या कुछ भी नहीं है, कोई कोई गुण ही नहीं है, अवगुणों से भरे हुए स्त्री है, इसकी वजह से किसी और को पति के रूप में चुनी है, किसी और से प्रेम की है, लेकिन मैं तो केवल आपसे प्रेम करती हूं। और ऐसा मत सोचो कृष्ण, बहुत सारे लोग हैं मेरे पीछे, बहुत सारे लोग आने वाले, लेकिन समय उनका आया नहीं है, अभी मेरा समय है, इससे तुरंत आके लेके जाओ। अगर क्यों, अगर आप थोड़ी सी भी देर करोगे तो क्या होगा, तन्मे भवान कलुरद बदिरंग जायाम आत्मार्पितश्च भवतोत्र विभो विदेही न वीर्य भागम अभिमताश्रुयै चैत्यारात गोमायवान नुगपते बलिरं भुजाक्ष तन्मे भवान खलु खलु शब्द के द्वारा कहते हैं, खलु मतलब आप निश्चित रूप में आपको आना ही पड़ेगा, खलु मतलब डेफिनेटली यू हैव टू कम, ऑर्डर दे रही है ये भाषा में, ऑर्डर की बात है, खलु मतलब करना ही पड़ेगा। क्या तन्मे भवान, हे भवान आप कृष्ण क्या करो, खलु वृद्धवधि रंग जायाम मुझे पति के रूप में स्वीकार, आप आके मुझे पति के रूप में स्वीकार करो, मैंने चुन लिया आपको पति के रूप में, आप मुझे पत्नी के रूप में चुनो ना चुनो बात की बात है, मैं तो चुन लिया है, पतिरंग जायाम क्यों, मैं चुन के क्या कर चुकी हूं, जैसे एक पत्नी जो पति को अर्पित कर देती है, आत्मा अर्पितश्च भवतो त्र विदो विभो विदेही, मैं अपना आत्मा को आपको समर्पण कर चुकी हूं, स्वीकार करना नहीं करना आपके ऊपर है, लेकिन आपको आके मुझे लेना ही पड़ेगा, कृष्ण को ऐसा ऑर्डर दे रही है। तो कृष्ण कंफ्यूजन से बोल रही, क्या बात है भाई, एक ओर से बोलती हो कि आप, मैं आपका समर्पित कर चुकी हूं, बाद में ऑर्डर भी देती हूं, आत्मनिवेदन क्या होता है मालूम है, आत्मनिवेदन सरेंडर बस, नो ऑर्डर। रुक्मिणी कहती है आत्मनिवेदन के आचार्य कौन है, बलि महाराज, बलि महाराज ने भगवान का क्या किया, पूर्ण शरणागत, कंप्लीट सरेंडर। लेकिन बलि महाराज का जो शरणागति है ना, कृष्ण जानते हो कैसे शरणागति हो, बलि महाराज का शरणागति जो है वो निर्भाव शरणागति है, लेकिन मेरी शरणागति उस प्रकार का नहीं है, स्वभाव शरणागति है, भाव से युक्त शरणागति है। जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई खाने के लिए आया, आपने बुलाया उनको, प्रसाद के लिए बुलाया, तो क्या किया आपने, पूरा सुंदर प्लेट बनाया, छप्पन भोग बनाया, जाके प्लेट लिख के रख दिया, ठीक है आप चाहे तो खा लेना, ये कौन सी शरणागति है, शरणागति है लेकिन निर्भाव, चाहे तो आप खा लेना, मैंने तो रख दिया आपको जो चाहे वो खा लेना, ये है, ये कौन सा शरणागति, कौन सा प्रेम है, निर्भाव प्रेम है, प्रेम में भाव नहीं है तो क्या फायदा इस प्रकार की सेवा में। लेकिन जो मां बच्चे को कैसे खिलाती है, और खाओ दे के खिलाती ना, वो सेवा में ये जो इंस्ट्रक्शन होता है ना, इससे क्या पता लगता है, स्वभाव शरणागति, इसलिए मैं ऑर्डर दे रहा हूं, मेरा जो ऑर्डर है ना शरणागति के अंतर्गत, आपको ऑर्डर देना जो है ना, ये ऑर्डर में भाव है। सुनो कृष्ण, आत्मा अर्पितश्च भवतो त्र विभो विदेही। तो कृष्ण कहते होंगे देखो ये कौन सी शरणागति होता है, अपने लिए मुझे ऑर्डर दे रही हो, अपनी इच्छा को प्राप्त संतुष्ट करना चाहती। रुक्मिणी कहती मेरी इच्छा कुछ नहीं है, मैं इच्छा करती हूं आपको जो करना है करो, लेकिन मेरी इच्छा क्या मालूम है, आपका इज्जत बचाना है। क्षत्रिय है ना, बहुत पॉलिटिशियन है, क्षत्रिय कन्याएं होती है वो उनके पतियों से भी होशियार होती है, ऐसा मैंने सुना राजस्थान में, जब क्षत्रिय होते हैं उनके जो पत्नियां होती थी वो बोल के बेचती थी ऐसा युद्ध करना, अगर उसको अगर हार जाओगे मत आना, ऐसा बोल के बेचती थी, यानी उनके अंदर क्षत्रियपन बहुत रहता है। इसलिए कहा कि ये मत सोचो कि मेरे अंदर बहुत इच्छा है आपको प्राप्त करने की, इच्छा है तो है तो है, दूसरी बात यह है कि मेरा इच्छा भले ही हो लेकिन मैं पत्र क्यों लिख रही हूं मालूम है, आपका इज्जत बचाने के लिए, मामी ये भागम वीर, मैं जो हूं वो आपका वीर भाग, मैं आपका भाग हूं, मतलब एक शेर जब शिकार करता है तो उस समय एक जो शिकार होता है वो शेर का होता है, लेकिन बीच में है अभिमता शोचान एक लोमड़ी जैसा, एक सियार जैसा आके ये शिशुपाल आके मुझे लेके जाएगा तो शेर का इज्जत क्या हो जाएगा। देखो श्री कृष्ण, आपका इज्जत बचाने के लिए मैं इससे पत्र लिख रही हूँ, जल्दी आओ लेके जाओ, ये तुम्हारा इज्जत का सवाल है। मैं तो ठीक है, मैं तो भक्ति करूंगा, आपसे प्रेम करूंगी, लेकिन मुझे कौन जानता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको बहुत फर्क पड़ेगा अगर आप लेके नहीं जाओगे तो। ये क्या है, मुझे प्राप्त नहीं करोगे, दूसरा क्या है, मुझे प्राप्त करो ना करो कि आप बोलो फर्क नहीं पड़े, लेकिन फिर भी क्या बोलेंगे लोग। देखो शिशुपाल ने कृष्ण का चीज को लेके गया, आपका इज्जत का सवाल है, इसलिए मेरा बहुत कंसर्न है। मतलब पता है बलि अंबुजाक्ष, ये अंबुजाक्ष, अंबुजाक्ष मतलब भगवान श्री कृष्ण का जो नेत्र है वो कमल के बराबर है, आपका जो कमल नेत्र है उनका मैं स्मरण करती रहूंगी और मेरा हृदय में आप प्रति जो विरह की भाव है उसको मैं ये आपकी चरण को, आपकी जो नेत्रों का स्मरण करते हुए मैं आपको शांत करूंगी। तो कृष्ण ने कहा, आप बड़ी बड़ी बातें बोल रही हो, जानते हो मैं कौन हूं? भगवान। भगवान की प्राप्ति आसानी से होता है क्या? उसके लिए बहुत पुण्य करना पड़ता है, बहुत साधना करना पड़ता है। रुक्मिणी किए हो कभी? रुक्मिणी कहा, पुत्रेष्ट दत्त नियम व्रत दैव विप्रा गुर्वार्चना विरबलम भगवान परेश। पुत्रेष्ट यानी अनेक अनेक प्रकार के पुण्य कार्य, दत्त दान धर्म इत्यादि, नियम साधना इत्यादि, व्रत अलग अलग प्रकार के जो वेदों में व्रत है व्रत, देव विप्र गुरु अर्चनादि वीर यानी देवता, विप्र मतलब ब्राह्मण और गुरुओं की जो सेवा पूजा है इत्यादि। हे भगवान परेशः, अलम परेशः, भगवान अलम परेशः, हे सात्येश्वर अलम, अगर आपको लगता है कि मैंने नहीं किया, आराधितो यदि गदाचरेत प्राणी, आपको लगता है कि मैंने सब किया है तो आप आओ, आगे क्या करो, एत्य पाणिम, मेरी जो पानी मेरे हाथ ग्रहण करो। इसे विवाह का दूसरा नाम है पाणिक ग्रहण, हाथ को धारण करना, इसको पाणिक ग्रहण कहा। क्या गदाग्रज हे कृष्ण, एत्य पाणिम, इस हाथ को आप आके ग्रहण करो, अगर आपको लगता है कि मैंने सब किया है। गृह्णन्तु एत्य प्राणिम, गृह्णन्तु, स्वीकार करो, मैं न धमघोष सुतादयो ने, लेकिन मैं इस हाथ को दमघोष सुतादयो ने, दमघोष मतलब शिशुपाल को, मैं इस हाथ को छूने नहीं दूंगी, हाँ छूने नहीं दूंगी, तो क्या करोगे, मैं मर जाऊंगा, मैं अपने आप को आपके विरह ताप की अग्नि में भस्मों की मर जाऊंगी, लेकिन ये जो मेरा शरीर है ना, धमो को शिशुपाल छुएगा नहीं, क्योंकि आपको मैं दे चुकी हूं। अगर वो आप छूने के लिए भी आएगा, आपका विरह ताप में मैं अपना शरीर को त्याग करके छोड़ दूंगी। अरे मालूम है, अग्नि में भस्म हो जाना बहुत दुख लगता है, बहुत कष्ट लगता है, नहीं लगेगा, क्यों, आपका जो आंख जो है, आपका नयन जो है, अंबुजाक्ष तो कमल जैसे आपका नयनों का, आपका जो ये सुंदरता का स्मरण करते हुए ये अग्नि का ताप अपने भस्म होने पर मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका स्मरण करते हुए मैं अपने शरीर को त्याग कर दूं। क्या भक्ति को वर्णन कर रही है, आगे कहते हैं तो कृष्ण ने कहा, अच्छा मैं आऊंगा लेने के लिए, लेकिन मैं सुना बहुत सारे राजा लोग हैं, बहुत सारे सैनिक है, इन सबको मैं कैसे परास्त कर पाऊंगा। रुक्मिणी कहती है, आप चिंता मत करो, आप यादव हो, मैं क्षत्रिय हूं, समझे, आप सुनो कैसे युद्ध करना है, कैसे आना है, कैसे लेके जाना है, वो सब बातें मेरे से सुनो, तो युद्ध कैसे करना, मुझे कैसे लेके जाना है, मैं प्लान बताती हूँ आपको, प्लान पता नहीं प्लान हो पाएगा कि नहीं, मैं प्लान बताऊंगी, वॉर प्लान जो है, वो जो अपहरण का जो प्लान है, चोरी कैसे करना है, वो बदले बताऊंगी। सो भवान मदितो त्वहने विदर्भान गुप्त समय दपतनापतिभिर् परीतः निर्मत्य चैत्य गजेन्द्र बलम प्रहस्य महाराक्षसेन विदुनो नवीर्य सुल्तान। राक्षस विधान से मुझे आप स्वीकार, आप सोचो मत कि मेरे भाई ने शिशुपाल को वादा किया है, सगाई भी हो चुका है, ये मत सोचो। एक विधान है, आठ प्रकार का विवाह होता है, मालूम है कृष्ण आठ प्रकार का है, उसमें एक प्रकार का विवाह है, उसका नाम क्या है? राक्षस विधान। उस प्रकार में विवाह करो, राक्षस विधान। माम राक्षस है ना विधनोद्व वीर्य शुल्कान, क्योंकि जो राक्षस विधान से आके मतलब किसी स्त्री को अपहरण करके विवाह कर रहा है उसको राक्षस विधान कहा जाता है। करो स्वभवान। अगले दिन तो क्या हुआ, अजितोद्वहने विदद्भान गुप्त समय दिया। कैसे आओ आप, अपनी पूरा सेना के साथ आओ, लेकिन सेना के साथ आओगे नजदीक शहर के अंदर तो क्या होगा, लोग सोचेंगे, क्या सोचेंगे, कृष्ण आए अपनी सेना को युद्ध करो, युद्ध हो जाएगा। सेना को लेके आना, उस सेना को कहां रखना, बाहर, बाहर रख के आप गुप्ता गुप्त रूप में आओ, गुप्त रूप में आओ, आके मेरे महल में आके मुझे स्वीकार करके आप मुझे पकड़ के राक्षस विधान है लेके जाना। अगर मान लो उसके बीच में किसी को पता लग गया कि कृष्ण आके रुक्मिणी का अपहरण किया है, वो सब लोग जो है क्या करेंगे, आपके ऊपर प्रहार करने के लिए प्रयास करेंगे, उस समय आपका जो सेना है ये मारी जो विदर्भ जो है वो राजधानी है उसको सब कुछ पहले से घेर चुके होंगे। देखा ये प्लान होता है, आप सीधा अटैक करने और युद्ध होगा, लेकिन अपहरण करके जाओगे उस समय वो आपकी जो सेना है विदर्भ को पहले से ही रक्षा कर दिए होंगे, आक्रमण किए होंगे, उनका सराउंडेड किए होंगे, तो वो नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं प्लान बता रहे हैं, प्लान वन प्लान टू। वन प्लान क्या है, बस प्लान क्या है, अपहरण करके लेके जाना, सेना को बाहर रखना। अगर मान लो कुछ गड़बड़ हो गया तो सेना पहले से ही है, उसको कंटिंजेंसी प्लान बोला जाता है। तो रुक्मिणी ने कंटिंजेंसी प्लान दिया, तब कृष्ण बोल देंगे तो ठीक है, मैं आऊंगा अंतपुर में आऊंगा, आके तुम्हारा हाथ को ग्रहण करके मैं जाऊंगा। उस समय मान लो अंतपुर के अंदर कौन रहता है, आपकी बंधु लोग रहते हैं, और हो सकता है बंधु लोगों को मुझे वध करना पड़े, वो तुम्हारा ठीक रहेगा? कभी कभी तुम्हारे भाई को मारना पड़े, तुम्हारे चाचा को मारना पड़े, कुछ बंधु लोगों को मारना पड़े, ये क्या तुम्हारे लिए उचित रहेगा? रुक्मिणी कहते हैं किसी को मारना है मार सकते, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कृष्ण बहुत डरते हैं अंतरपुर में आने के लिए। मैं और एक प्लान बताती हूं, सुनो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता किसको मारो, मुझे तो आपको प्राप्त करना है, तो जो करना है कर लेना, लेकिन बात है कि इतना डर लग रहा है कि अंतरपुर में आने के लिए, तो मैं एक आइडिया बताती हूं। एक दिन पहले क्या होता है, हमारा रिवाज है कि विवाह होने से पहले हम एक दुर्गा के मंदिर में जाते हैं। अभी सुनो, जब दुर्गा के मंदिर में जाते हैं ना, इतना सैनिक लोग साथ में रहते, केवल स्त्रियां ही साथ में जाती है, वो बेस्ट टाइम है, इतना सैनिक वगैरह इत्यादि होते, वो टाइम में आके मुझे अपहरण करके जाओ। अंतपुरांतर चरीम अहनीय बंधु, अहनीय बंधु, मुझे बंधुओं को मारने का तुमको डर लग रहा है, अंतपुरांतर चरीम, अंतपुर में अंदर में जो बंधु लोग होते हैं उनको मारने का आपको डर लगता है। त्वामुद्वहेकतमिति प्रवदाम उपायम, आप सोच रहे होंगे त्वाम ततमिति, कैसे कैसे करूं खत्म, मतलब तो कैसे करूं इस बात को, कैसे आपको राक्षस विधान से मैं लेके जाऊं। अगर आपको ऐसा मन में लगता होगा तो प्रवदाम उपाय, मैं उपाय बताती हूं, प्रवदाम मतलब मैं कहती हूं उपाय, क्या है उपाय, पूर्वे जुरस्ति महती कुलदेव यात्रा, पूर्वे यानी विवाह के पूर्व, एक दिन पूर्व क्या होता है, कुलदेव यात्रा निकलती है, हमारा कुलदेवी की उपासना के लिए एक यात्रा निकलती है। यस्याम बहिर्नववधूर गिरिजा उपेयात, गिरिजा मतलब भवानी, गिरिजा मतलब दुर्गा देवी का एक नाम है, तो हमारा दुर्गा का एक मंदिर है, उधर जाके हम पूजा करते हैं, आप क्या करो उस समय आके मुझे अपहरण करके लेके जाओ। तब कृष्ण ने कहा कि अगर मान लो कि मैं नहीं आऊंगा तो लास्ट लाइन में, लास्ट श्लोक में रुक्मिणी अपनी भक्ति भाव को बहुत सुंदर तरीके से व्यक्त करती है। यस्यां विपंकज रजस्नवनम महंतो वांछन्त्यमापतिरिवात्मतमोपहत्ये। अगर आप नहीं आओगे तो मैं क्या करूंगी, स्नापनम, स्नान करूंगी। किसमें स्नान करूंगी? ये श्यांगी आपके चरण कमलों का जो रज है, पंकज रज, ये श्यांगी पंकज रज, चरण कमलों का धूल से स्तवनम, अपने आप को स्नान करूंगी। जिन चरण कमलों का जो रज है वो रज वांछन्ति, इच्छा करते, कौन इच्छा करते हैं? बड़े बड़े महात्मा लोग, इतना हद तक कि शिवजी, ब्रह्मा इत्यादि लोग भी वांछन्ति, उसको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। क्यों? जैसे वो प्राप्त करेंगे अपने सर के ऊपर चरण कमलों का धूलि को धारण करेंगे, शिवजी ब्रह्मा इत्यादि महान देवताओं का तमोपहत्ते, उनके अंदर जो तमोगुण है वो भी नाश होता है, उनके अंदर जो अशुभ कुछ होता है उससे नाश हो जाता है उनका, ऐसा पवित्र है आपका चरण कमलों का धूलि। यर्यांबुजासन लभेत भवत् प्रसादम, यानी दूसरे शब्दों में रुक्मिणी कहती है मैं अपना ये शरीर जो है आपकी चरण कमलों के रज के द्वारा स्नान करके इस शरीर को त्याग कर दूं। क्यों? इस जन्म में नहीं मिला तो अगले जन्म में मिल जाएंगे, अगले जन्म में मैं वही कार्य करूंगी, वही पुण्यकार गुरु अर्चना, जो आपको प्राप्त करने के लिए जो भी चाहिए वो सब करने के लिए तैयार हो जाऊंगी अगले जन्म में। इस जन्म में नहीं होता तो अगले जन्म में, यर्यांबुजाक्ष न लभेत, अगले जन्म में भी नहीं प्राप्त होता है, भवत प्रसादम, आपका प्रसाद, आपका कृपा प्राप्त नहीं होता है, जय युमाशु, मैं वापस प्राण क्या करूंगी। अगर कोई पूछे अच्छा वापस प्राण क्या करो, क्या करोगे? अगले जन्म में वापस मैं करूंगी, आप क्या आपका इंतजार करोगे? तो अगले जन्म में, उसके अगले जन्म में भी नहीं मिला तो क्या करूंगी? शत जन्म भी स्यात, 100 जन्म में क्यों ना हो, केवल मुझे आपको ही प्राप्त करना है, मेरा विवाह केवल आपके साथ में है, किसी के साथ नहीं होगा, इस जन्म की बात नहीं है, अगला जन्म हो शत जन्म भी स्यात, 100 जन्म 1000 जन्म हो, कृष्ण मैं केवल आपसे ही विवाह करूंगी, किसी से नहीं, मेरा शरणागति, मेरा जीवन केवल आपके लिए है और किसी के लिए नहीं है, मैं किसी और को यह शरीर मैं नहीं दूंगी, किसी को यह शरीर को स्पर्श करने नहीं दूंगी, शतजन न विस्यात, ये रुक्मिणी जी का भक्ति है। 7 श्लोकों में जैसा ये पत्र कृष्ण सुना, तुरंत ब्राह्मण को कहा कि ब्राह्मण जाओ कहो मैं आ रहा हूं, तो कृष्ण गए, अपहरण के उसका वर्णन अगले अध्याय में एक सुंदर कहानी के रूप में, कथा के रूप में प्राप्त होता है। तो ऐसा कह के रुक्मिणी का पत्र हमने अभी चर्चा किया, ये ब्राह्मण जो रुक्मिणी का पत्र को लेके गया था उसके विषय में थोड़ा सा कहना चाहता हूं। वो हमारे ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय में, ब्रह्म मध्व संप्रदाय बताइए, गौड़ी संप्रदाय भी पंथ संप्रदाय जुड़ा हुआ है, वही ब्राह्मण का एक और एक अवतार हुआ हमारे आचार्य के रूप में। आपको शायद नहीं मालूम होगा, हमारे जो आचार्यों का लिस्ट दिया गया है, कृष्ण ने ब्रह्मा को ज्ञान दिया, ब्रह्मा ने नारद जी को, नारद ने व्यास को, व्यास ने मध्वाचार्य को दिया, मध्वाचार्य के बाद बहुत सारे आचार्य है, उन आचार्यों के लाइन में एक आचार्य है वादिराज तीर्थ। तो वादिराज तीर्थ ये ब्राह्मण के अवतार ऐसा माना जाता है। तो आज रुक्मिणी द्वादशी है, और भी एक बड़ा सुंदर प्रसंग है जिसके अंदर रुक्मिणी का प्रेम कृष्ण के प्रति प्रकट होता है। रुक्मिणी चावर ला रही थी कृष्ण, असल में कुछ सेविकाओं के साथ थी, सेविका चावर ला रही थी, रुक्मिणी सोचा कि मैं खुद करूंगी। उस समय कृष्ण रुक्मिणी के सुंदरता को देख के, भक्ति को देख के, उनका जो स्वभाव को देख के, गुणों को देख के कृष्ण परिहास के रूप में हो या खुद महसूस कर रहे थे कितनी सुंदरी रुक्मिणी है, पता नहीं मैं मुझे क्यों चुनी, मैं भी पता नहीं होश में नहीं आया, मैं आके उनको लेके आ गया ये भी सोच रहा नहीं कि मैं कितना, मैं एक यादव हूं, मुझे मालूम नहीं पड़ता क्या करना नहीं करना है। कोई बोलता है कि इसका पुत्र है, कोई बोलता है इसका पुत्र है, मेरा माता पिता का कोई ठिकाना नहीं है। ऐसे व्यक्ति को तो प्रेम मित्र लिख दिया और मैं तो बड़ा साहस करके बड़ा बन के लेके आ गया, ये सब कृष्ण बोलने लगे। और रुक्मिणी जो है ये बात सुन के, कृष्ण का ये बात सुन के, किसी और से तुम विवाह करोगी तो बहुत अच्छा रहेगा, उनको तुमको बहुत अच्छा देखभाल करेंगे, क्योंकि लोग बोलते मैं आत्माराम हूं, केवल मैं अपने बारे में सोचता हूं, तुम्हारे बारे में सोचता हूं कि नहीं मालूम नहीं। ये सब बातें सुनकर रुक्मिणी बेहोश हो गई। तो रुक्मिणी का भक्ति जो है कृष्ण के प्रति, कृष्ण का दर्शन करने से पहले सुनने मात्र से प्रेम और उनको प्राप्त करने की लालसा, और कृष्ण की प्राप्ति होने के बाद थोड़ी सी भी कृष्ण का विरह का थोड़ा स्मरण होने मात्र से ऐसा लगता है कि मेरा प्राण निकल जाए। आज रुक्मिणी का स्मरण करते हुए आशीर्वाद स्वीकार करेंगे कि हमको भी ऐसा भक्ति प्रदान करो ताकि सुनने मात्र से आपको जिस प्रकार कृष्ण प्रति प्रेम प्राप्त हुआ हमारे अंदर भी थोड़ी सी प्राप्त हो जाए, हमारा जीवन धन्य हो जाए। हरे कृष्ण। कथा में क्वेश्चन नहीं होता है। अरे चंद्राश्रमद भागवतम की श्री प्रभुपाद की जय।
हरे कृष्ण। धन्यवाद देना चाहेंगे कमलचंद प्रभु का, बहुत ही सुंदर और मधुर कथा कमलचंद प्रभु की। आपका एक और अच्छा समाचार, आगे आने वाली नरसिंह जयंती परसों के दिन ही प्रभु जी से फिर से हमें कथा सुनने का अवसर प्राप्त होगा सुबह 8 से 10। जगत गुरु।